ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को जारी रखने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे मुख्य पहचान पत्रों को स्वीकार करने पर भी विचार करने की सलाह दी। न्यायालय ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य संविधान के दायरे में है, लेकिन न्यायालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के समय पर प्रश्न उठाया है। न्यायालय ने कहा है कि पुनरीक्षण कार्य विधानसभा चुनाव के लिए ही क्यों हो रहा है और इसे पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आयोग को अगर नागरिकता की ही जांच करनी थी तो उसे ये कार्य पहले करना चाहिए था। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड को 1066 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय के अनुसार असम के लिए 375 करोड़ रुपए, मणिपुर के लिए 29 करोड़, मेघालय के लिए 30 करोड़, मिजोरम के लिए 22 करोड़, केरल के लिए 153 करोड़ और उत्तराखंड के लिए 455 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष से 14 राज्यों को 6166 करोड़ रुपए से अधिक और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 12 राज्यों को 1988 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है। इसके अलावा राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 5 राज्यों को 726 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गुजरात में एक समारोह में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले एक दशक में देश के उच्च शिक्षा ढांचे में बड़ा परिवर्तन आया है।
जब अगर हम पिछले 10 साल की 11 साल की समीक्षा करते हैं 2014-15 की बेसलाइन डाटा से, आज हम लोगों की 30% इंक्रीज हुई है उच्च शिक्षा की पार्टिसिपेशन। उसमें से महिलाओं की सबसे ज्यादा हुई है 38%। हमारी पीएचडी स्कॉलर्स की संख्या बढ़ी है। हमारी शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स की 14 की तुलना में अभी 10% ग्रोथ हुई है। एससीज की, शेड्यूल कास्ट की हमारी 8% ग्रोथ हुई है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उत्थान के साथ साथ उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक गंभीरता में भी वृद्धि होनी चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री धनखड़ ने बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्थान को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इसके बिना यह उत्थान टिकाऊ नहीं होगा और ये देश की परंपराओं के अनुकूल नहीं है। श्री धनखड़ ने संस्कृत, तमिल, पाली और प्राकृत जैसी सभी शास्त्रीय भाषाओं को सम्मिलित करते हुए भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों के डिजिटाइज्ड कोष के सृजन पर बल दिया। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक रूपरेखा जारी की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और नीति आयोग के सदस्य विजय कुमार सारस्वत ने संयुक्त रूप से इस रूपरेखा को जारी किया। ये रूपरेखा पूरे देश में राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की भूमिका तथा कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा को बेहद सफल बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक स्वीकृति स्थापित की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन और मध्य भारत में अगले 4-5 दिन के दौरान मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। लॉर्ड्स में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहले दिन लंच तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए हैं। दोनों विकेट नीतीश रेड्डी ने लिए। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।